नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अपने नागरिकों को हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी। इसराइल और लेबनान ने युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका की फार्मा कंपनियों के साथ ऐतिहासिक समझौते के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती की घोषणा की। अल्जीरिया के तट के निकट नाव पलटने से 17 सोमाली प्रवासियों की मौत। और ISF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत 2 स्वर्ण सहित 9 पदक के साथ शीर्ष पर। अब समाचार विस्तार से। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने लोगों को हवाई या सड़क किसी भी माध्यम से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र में पाबंदियां और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से निर्धारित सीमा मार्गो से देश छोड़ने और दूतावास से समन्वय बनाए रखने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया में भारतीयों के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह की बातें भारत अमेरिका संबंधों की सच्चाई को नहीं दिखाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉडकास्टर के 4 पन्नों का प्रतिलेख साझा किया था, जिसमें भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कल रात व्हाइट हाउस में हुई बातचीत के बाद इसराइल और लेबनान 3 सप्ताह के लिए युद्धविराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में इसराइल के वॉशिंगटन स्थित राजदूत येचिए लेटर और लेबनान के अमरीका स्थित राजदूत नाडा मोवाद की अमरीकी मध्यस्थता में हुई बातचीत के दूसरे दौर की मेजबानी की। ट्रंप ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में इसराइल और लेबनान के अमरीकी राजदूतों के बीच हुई यह दूसरी बैठक बहुत सफल रही। शुरुआती 10 दिवसीय युद्ध विराम सोमवार को समाप्त होने वाला था। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध संघर्ष में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की संभावना को खारिज किया। तेहरान के एकीकृत प्रस्ताव देने तक ईरान के साथ संघर्ष विराम के विस्तार की घोषणा किए जाने के 2 दिन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का मानना है कि ईरान उदारवादियों और कट्टरपंथियों के बीच आंतरिक मतभेद के साथ जूझ रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
ब्रिटेन और फ्रांस ने उम्मीद जताई है कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही सैन्य योजनाएं अंतिम रूप ले रही हैं और इससे इस अहम मार्ग से व्यापार फिर से सामान्य हो सकेगा। एक रिपोर्ट।
लंदन में 2 दिन तक चली बैठक में दुनिया के 44 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया। बैठक में सैन्य योजनाकारों ने युद्ध विराम के बाद इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय मिशन की रूपरेखा पर चर्चा की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली और फ्रांस के रक्षा मंत्री कैथरीन वाउट्रीन ने संयुक्त बयान में कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस दिशा में ठोस प्रगति होगी। जॉन हीली ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य एक रक्षात्मक बहुराष्ट्रीय अभियान तैयार करना है जो वाणिज्यिक जहाजों का भरोसा बढ़ाएगा और जरूरत पड़ने पर बारूदी सुरंग को हटाकर जहाजों की सुरक्षा करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि 12 से अधिक देश इस मिशन में शामिल होने पर सहमत हो चुके हैं। वही ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगा, वे होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा नहीं खोलेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
ब्रिक्स मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देशों के समूह मेना के परामर्श सत्र के दौरान विदेश मंत्रालय में दक्षिणी क्षेत्रों की सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने रूस के उप विदेश मंत्री बोरिसेंको जॉर्जी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीकी देशों मेना क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। ब्रिक्स मेना के बीच जारी परामर्श बैठक से अलग ईरान के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत मेहदी शिश्तरी के साथ बैठक में दक्षिणी क्षेत्रों की सचिव ने क्षेत्रीय स्थिति पर दृष्टिकोण साझा किए। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने चीन के मध्य पूर्व मामलों के विशेष दूत झाई चुन से भी मुलाकात की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्ची में लिखी गई दवाओं की कीमत को कम करने के लिए मुख्य दवा कंपनियों के साथ व्यापक समझौते की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिका के इतिहास में दवा की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती बताया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि अग्रणी दवा कंपनियों में से एक रिजेनरॉन ने दवाओं को सबसे अनुकूल राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। विश्व की सबसे बड़ी 17 दवा कंपनियां ब्रांडेड दवा बाजार के 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। ये कंपनियां अब विश्व में कहीं भी अमेरिका के रोगियों को कम कीमतों पर अपनी दवाओं को बेचने पर सहमत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक दवाइयों की अत्यधिक कीमतें चुकाते रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये समझौता अब लगभग 86% दवा बाजार को सम्मिलित करता है। आगे की चर्चा जारी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
अमेरिका दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित करेगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि पुतिन आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन आते हैं तो ये संभवतः बहुत मददगार होगा। अमेरिका इस वर्ष 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने गोद लिए गृह राज्य फ्लोरिडा में एक भव्य शिखर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की संवादात्मक बैठकों में भाग लिया। ये संवाद नए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीबी जॉर्ज ने उम्मीदवारों के साथ संयुक्त राष्ट्र के प्रति उनके दृष्टिकोण और भारत से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालिना बेरबॉक अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगी। इस दौरान वो विभिन्न विषयों पर भारतीय अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। उनकी प्रवक्ता लॉनिस कॉलिंस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बेरबॉक अगले सप्ताह नई दिल्ली और बीजिंग की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। कॉलिंस ने कहा है कि बेरबॉक भारत और चीन की सरकारों के निमंत्रण पर यात्रा कर रही है। एक रिपोर्ट।
भारत दौरे के दौरान बेरबॉक विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन प्रिजनर के नेतृत्व में भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम से भी मिलेंगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के रूप में ये बेरबॉक की भारत की पहली यात्रा होगी। इससे पहले जब वे जर्मनी की विदेश मंत्री थी तब उन्होंने भारत की यात्रा की थी। फरवरी महीने में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत आए थे। इसके बाद वे चीन जाएंगी जहां वे सरकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर स्टीफन जैक्सन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम से मिलेंगी। विश्व दर्पण समाचार के लिए मैं मनोज।
अल्जीरिया और स्पेन के बीच समुद्री क्षेत्र में एक नौका पलटने से 17 सोमालियाई प्रवासियों की मौत हो गई। मृतकों में 12 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। अल्जीरिया में सोमालिया के राजदूत यूसुफ अहमद हसन ने सोमालियाई सरकारी मीडिया को इस दुर्घटना की जानकारी दी। अल्जीरियाई विदेश मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा है कि राजधानी अल्जीरिया से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम के तटीय प्रांत में अफ्रीकी प्रवासियों के एक समूह की मौत हुई है। मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत 2 स्वर्ण पदकों सहित कुल 9 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। प्राची गायकवाड ने कल जूनियर महिला 50 मीटर राइफल स्पर्धा के फाइनल में 354.6 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। वहीं नारायण प्रणव ने जूनियर पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के खाते में 4 रजत और 3 कांस्य पदक है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम थॉमस कप का खिताब वापस जीतने और महिला टीम उबर कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने के इरादे से आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। डेनमार्क के होरसेंस में शुरू हो रहे थॉमस और उबर कप फाइनल में भारत आज कनाडा के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। 4 वर्ष पहले भारत ने थॉमस कप का खिताब जीता था जिसे बैडमिंटन की विश्व टीम चैंपियनशिप माना जाता है। उबर कप में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम आज डेनमार्क, कल यूक्रेन और सोमवार को चीन का सामना करेगी। तन्वी शर्मा, देविका सिहाग, उन्नति हुड्डा और ईशरानी बरुआ के साथ भारत के पास कई युवा खिलाड़ी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अपने नागरिकों को हवाई या सड़क मार्ग से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी। इसराइल और लेबनान ने युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई। अमेरिका की फार्मा कंपनियों के साथ ऐतिहासिक समझौते के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतों में सबसे बड़ी कटौती की घोषणा की। अल्जीरिया के तट के निकट नाव पलटने से 17 सोमाली प्रवासियों की मौत। और ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत 2 स्वर्ण सहित 9 पदक के साथ शीर्ष पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।